हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक प्रमाण 35, 36 एंड 37। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाद्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्वैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतना तथा वृंदावनम् रम्या काशिदुपासना व्रजवधु वैकेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां
अन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 35। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच परीक्षित वमादिष्ट सकलिर्जातवी पथु तमुद्यतासी माहेदं दंडपाणिमिवोध्यतं परीक्षित वमादिष्ट सकलिर्जातवी पथु तमुद्यतासिमाहिदं दण्डपाणिमिवोध्यतं परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातविपथु तमुद्यतासिमाहिदं दंडपाणिमिवोध्यतम्। शब्दात् सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षिता महाराज परीक्षित द्वारा परीक्षित एवं आदिष्ट। एवं का मतलब होता है इस प्रकार आदिष्ट मतलब आदेश दिया जाकर सह वह कली यानी कलयुग जो कली रूपी क्षुद्र खड़ा था ना वो वे सकलिर जात वेपथु। जात मतलब अभी उसको होने लगा वेपथु यानी कंपन। जब महाराज परीक्षित के बात को सुना तो उसके शरीर में कंपन होने लगा। तम उद्यता सीमा हेद तम उद्यता जब उसने उसको उद्यता मतलब उठी हुई आसिम का मतलब होता है तलवार। जब उसने महाराज परीक्षित की तलवार को अपने ऊपर आते हुए देखा तो आहेदम आह का मतलब होता है कहा इदम मतलब यह दंड पाणी मिवोध्यतम उसको ऐसा लगा। दंड पाणी का मतलब होता है यमराज या मृत्यु एवं यानी दृश्य का मतलब होता है ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात यमराज उद्यतम यहाँ पर मुझे मारने के लिए तैयार खड़ा है। अनुवाद देखिए श्री सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार महाराज परीक्षित से आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि राजा कली को तुरंत ही मारने के लिए उद्यत था यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता अन्यथा राजा उसको जीवन दान देने के लिए भी तैयार था। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगातार उपाय लगाया, अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए। अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंघुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीमद् भागवतम अध्याय 17 पहला सिकंद अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। कली है जो कि समस्त जीवों के पवित्रता को हरण करने वाला है, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाला है, उसको भी पुरस्कार, उसको तो केवल दंड मिलना चाहिए और दंड भी कैसा, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये महाराजा परीक्षित उनको पुरस्कार दे रहे हैं। तो हमने देखा कि महाराजा परीक्षित ने जब देखा कलयुग को कि किस तरह से वो गाय और बैल के ऊपर यानी पृथ्वी और धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो बोलने लगे मुझे बताओ वो कौन है जिसने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया है। परंतु कली ने किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं बताया, क्योंकि वास्तव में एक भक्त जानता है कि जो कुछ हो रहा है या तो मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है या फिर भगवान की कृपा है। मैं वास्तव में जो मुझे मिल रहा है उस दुख से अधिक दुख देने सहने के योग्य हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की इच्छा के बगैर कुछ कर सके, तो जो मुझे मेरे दुख का कारण बन रहे हैं वो भी अवश्य भगवान की इच्छा से ही हो रहा होगा। तो किसी को भी आरोप ना लगाते हुए कलयुग ने धर्म रूपी बेल ने महाराजा परीक्षित को कहा कि आप धर्म के ज्ञाता हो ना, आप स्वयं ही बता दो कि मेरे दुख का कारण कौन है। तब महाराजा परीक्षित ने कहा कि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे तीन पैर इसीलिए कटे हैं क्योंकि कलयुग आ गया है और कलयुग में अधर्म इतना जोर हो गया है, इतना बढ़ गया है कि तुम्हारी ये दुर्दशा उस कलयुग के कारण हुई है। और तुम फिक्र मत करो, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन का उत्तराधिकारी हूँ। अगर ये जो तुम्हें कष्ट देने वाला है, अगर कोई स्वर्ग का देवता भी होगा ना, तो भी मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं अवश्य उसको मारूंगा। तभी और कहने लगे मुझे पता है कि यही कलयुग जो है वो तुम्हारे दुख का कारण है। तो फिर फौरन से अपना शस्त्र निकाला, तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कलयुग जब कलयुग ने देखा कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना राजा का वेश त्याग कर दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दिया, राजा परीक्षित की शरण में आ गया। और शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय राजा परीक्षित ने उस तीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीनवत्सल जो थे। ये भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा गुण है कि वो बहुत करुणामय होते, उनका हृदय जल्दी पिघल जाता है, वो दुष्ट की दुष्टता को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि कोई शरणागत है उस पर दया करने में उनको आनंद आता है। तो उनको उन्होंने देखा कि कलयुग अब मेरी शरण में आ गया है, तो राजा ने इस प्रकार कहा कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु, तुम जैसे अधर्म के बंधु को मैं अपने क्षेत्र में तो नहीं रहने दूंगा। और आगे बोला, अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। न वर्तितव्यम तथा धर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञवितान अविख्या। कि यहाँ पर तो मेरे राज्य में तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि मेरे राज्य में तो भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है। यहाँ पर तो भक्त लोग जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सदैव कार्य करते हैं, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मगर मैं अपने राज्य में तो तुम्हें नहीं रहने दूंगा। और इस तरह से उनके हाथ में जब तलवार देखी, उनको ऐसा लगा, कलयुग को ऐसा लगा कि ये महाराजा परीक्षित भले मुझे बोल रहे हैं, लेकिन ये मुझे मार डालेंगे। ये यमराज की तरह तलवार लेकर मेरे सामने खड़े हैं और मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, भला मुझे बख्श देंगे? मुझे अवश्य मारेंगे। इसलिए उसके कलयुग के हृदय में बहुत ज्यादा भय होने लगा। और आज सूत गोस्वामी कलयुग के उस भय को दर्शाते हुए कहते हैं, परीक्षित वमादिष्ट। जब परीक्षित महाराज इस तरह से उन्होंने आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, आदिष्ट उसने जब इस तरह से आदेश दिया तो क्या हुआ, सकलिर जातवे पथु, फिर कलयुग तो और भी ज्यादा भयभीत हो गया, वे पथु उसको कंपन होने लगा, अगर महाराज अब परीक्षित के राज्य में नहीं रहूंगा तो किधर रहूंगा। तो आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, तम उद्यता सीमा हेदम, उन्होंने देखा ये तलवार अब मेरी गर्दन पर लगने से पहले मैं कुछ याचना कर दूं, कुछ महाराजा परीक्षित से कुछ बता दूं अपने मन में मेरे क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने आह मतलब ऐसा कहा, दंड पाणी मिवोदितम, उसे ऐसा लग रहा था बस अब यमराज तो मेरे सर पे खड़े हैं और अब मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने महाराजा परीक्षित के हृदय में दया को देखते हुए कुछ कहने का साहस किया। और श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि कलयुग जानता था कि अगर मैंने महाराजा परीक्षित की बात नहीं मानी तो अवश्य मुझे मार डालेंगे। और उन्होंने मुझे क्या आदेश दिया है कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। और अब क्योंकि कलयुग ने बहुत सारे उपाय कर लिए, परंतु अब अंत में जो सबसे सुंदर उपाय किया है वो क्या है, शरण में आ गए हैं, है ना। वो कांपते हुए महाराजा परीक्षित की शरण में आ गए हैं। वास्तव में भक्तों, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम जब देखें कि सामने वाला मुझसे ज्यादा बलवान है, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर उससे क्या लड़ना, शरण में आ जाओ, सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक भक्त को एक वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान से कोई कंप्लेन नहीं, बस भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि जब मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो अवश्य वो मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा गुण होता है एक व्यक्ति का, एक जीव का, कि वो किसी के अंडर में, लोग सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र रहकर आनंदित होऊंगा, परंतु स्वतंत्रता कभी भी आनंद प्रदान नहीं करती है, क्योंकि जब हर एक स्वतंत्र आप हो जाते हो तो हर एक वस्तु को आपको खुद फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप शरणागत होते हो, जैसे एक छोटा बच्चा वो माता पिता के शरणागत होता है, माता पिता को पता होता है कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है, अब इसको वस्त्र लेकर देने हैं, इसको शूज लेकर देने हैं, उसका बैग लेकर देना, उसको ये लेकर देना, तो हर एक वस्तु का वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा छोटा है, उससे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हर एक चीज का वो स्वयं ध्यान करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है फिर इतनी फिक्र नहीं करते। इसलिए हमें भगवान के सामने और गुरुजनों के सामने सदैव मुड्ढ बनकर रहना चाहिए, मूर्ख बनकर रहना चाहिए, छोटा बनकर रहना चाहिए। ऐसे उनको दिखाना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप जिस तरह चाहिए हमारी सुरक्षा कीजिए। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा संरक्षित होंगे। इसलिए कलयुग जो है वो बहुत ही सुंदर चाल चल रहा है। वो क्या कर रहा है कि महाराज परीक्षित की शरण में आ गया और उसे पता है जिस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भगवान की शरण में जाता है उनको संरक्षण प्राप्त होता है, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर भी भगवान के गुण पाए जाते हैं और वो भी अपने शरणागत आए हुए जीव को कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो इसे श्रीला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो एक राजा के अंदर गुण अवश्य होना चाहिए कि वो अपराधियों के सामने यमराज की तरह हो। ऐसा नहीं हो कि स्वयं जो राजा है वो भी अपराधियों के सामने कांपने लगे, डरने लगे। आजकल राजाओं को तो डर लगता है, मतलब पुलिस वाले होते हैं वो भी डर रहे होते हैं, बोलते हैं ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं, इनसे कौन निपट सकता है ये वो। लेकिन वास्तव में जो एक राजा होता है उसको इतना बलवान होना चाहिए कि सामने चाहे साक्षात कली क्यों ना खड़ा हो फिर भी राजा के क्रोध को देखकर, राजा के तलवार को देखकर वो डर से कांपने लगे। तो राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। तो अगर इस तरह से राजा बहुत ज्यादा बलवान होगा तो फिर क्या होगा, अपराधी ये सोचेंगे कि भाई मेरे जीवन का तो बहुत ज्यादा हानि होने वाली है, मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए मैं अपराध नहीं करूं। वरना अगर राजा के अंदर कोई दम नहीं होगा, कोई बल नहीं होगा, तो हर जगह अपराध अपराध हो जाएंगे। तो यहाँ राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन किया जाता है। ये विधि है, क्या विधि है कि जो शुद्ध भक्त हैं या जो सीधे साधे नागरिक हैं उनको आतंक से बचाने के लिए, उत्पात से बचाने के लिए, उनके जीवन को कष्ट से बचाने के लिए राजा के अंदर इतना बल हो कि जो उत्पात खड़े करने वाले आतंकवादी हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले व्यक्ति, उनके सामने काल की तरह तलवार खड़ा करके उन साधारण जो प्रजा है उनको संरक्षण प्रदान करे। राजा के अंदर इतना बल होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि महाराजा परीक्षित ने तलवार निकाल दी और कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। परंतु अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराजा परीक्षित को इस तरह से तलवार निकाले देखने के बाद कलयुग भय से कांपने लगा। कलिर जाता वे पथु, वो कांपने लगा और इस तरह से कहा, क्या कहा, कलिर उवाच यत्र कवाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाख्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं यत्र क्ववाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाख्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं यत्र क्ववाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाख्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं यत्र क्ववाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाख्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं यत्र यत्र अभी कली कह रहा है महाराज परीक्षित को, यत्र क्व क्व का मतलब होता है तथा, कहीं भी, जहां कहीं भी, वा वा मतलब अथवा, अथ फलस्वरूप, वत्स्यामि वास करूंगा, सार्वभौम हे पृथ्वी के स्वामी, तवाख्यया त्वावाज्ञया का मतलब है आपकी आज्ञा से। आप मुझे कह रहे हो कि मेरा ये जो क्षेत्र है वो छोड़कर चले जाओ, मेरे क्षेत्र में नहीं रहो, मगर आप तो सार्वभौम हो। सार्वभौम मतलब समस्त पृथ्वी के स्वामी। जैसे अभी क्या होता है, एक कंट्री का अलग राजा होता है, एक कंट्री का अलग गवर्नमेंट होता है, एक कंट्री का अलग मतलब वो होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। लेकिन जब भी महाराजा परीक्षित का राज्य था ना, तब वो सार्वभौम यानी सारी पृथ्वी पर जितने और नगर और गांव थे उन सब पर महाराजा परीक्षित का ही राज्य था। इसलिए ये कलयुग जो है वो महाराजा परीक्षित से कह रहे हैं, यत्र क्ववाथ वत्स्यामि, मैं किधर जाऊं, जहां जहां भी जाऊंगा सार्वभौम तवा गया, हर एक जगह पर तो तुम्हारा ही राज है, हर एक जगह पर तो आपका ही शासन है। लक्ष्य तत्र तत्रापि, जहां पर भी मैं जाऊंगा देखता हूँ, लक्ष्य मतलब जिधर जिधर भी मैं देखता हूँ, तत्र तत्र वहां वहां अपि भी त्वाम आपको ही देखता हूँ। और कैसे देखता हूँ, आतेषु शरासनम, आतेषु मतलब लिया हुआ, इशु कहते हैं बाण को, और शरासनम का मतलब होता है धनुष बाण। मैं जिधर भी जाऊंगा आप ही सामने मेरे धनुष बाण खड़े, मेरे प्राण लेने के लिए तो तैयार खड़े होंगे, क्योंकि हर जगह पर तो आपका राज्य है। अब मुझे आप ही बताओ कि मैं किधर जाऊं, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। आप मुझे कह रहे हो कि मेरे क्षेत्र में नहीं रह सकते, और यहाँ पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आपका राज्य ना हो। जिधर जिधर मैं जाऊंगा वहां पर तो आपका ही राज्य है, आप तो सार्वभौम हो, पृथ्वीपति हो। अनुवाद देखिए, हे राजा मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहीं केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कल ही देख रहा था कि महाराजा परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतएव वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उससे राजा उसी मुद्रा में दिखेगा। कली उपद्रव के निमित्त था, और महाराजा परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन करता थे, अतएव कली के लिए तो यही श्रेष्ठ था कि राजा उसे अनियंत्र ना मारकर वही मार डाले अन्यत्र। मतलब अब कली क्या कर रहा था, उसका काम है उपद्रव करना, है ना। उसको तो जरूर ही जहां पर भी रहेगा वहां पर उपद्रव करना है, धर्म का हानि करना उसका काम है। वो तो जाहिर सी बात है धर्म को इसी तरह से कष्ट पहुंचाएगा जिस तरह से आज पहुंचा रहा है। तो महाराजा परीक्षित ने कहा तुम निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो जहां पर भी जाएगा वहां पर महाराजा परीक्षित का ही राज्य है। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी बोलते उसके लिए श्रेष्ठ कहा था कि अभी और किधर भी जाके उपद्रव करने ही वाला है तो यहीं पर मार देना, मारना ही तो उसको पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह ही नहीं थी जहां पर महाराजा परीक्षित का राज्य नहीं है। तो आगे श्री प्रभुपाद कहते अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था, और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। अब उसने हथियार डाल दिए। सबसे सुंदर कार्य जो है ना कलयुग का वो ये है कि उसने महाराजा परीक्षित को शरण ग्रहण कर ली कि अब आप ही कुछ ऐसा कीजिए, मुझे जीवन दान लीजिए, मैं रहूं तो किधर रहूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जिधर भी जाऊंगा वहां पर तो आप इसी तरह धनुष बाण खड़े मेरे सामने खड़े रहेंगे, और मेरी मृत्यु सदैव मुझे मेरे सिर पर मंडलाती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई भी तो जगह ऐसी नहीं जहां पर आपका राज्य नहीं हो। तो अब आप ही बताइए मैं किधर जाऊं। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि अब जो करना है वो किसको करना है, राजा को करना है, क्योंकि राजा उपद्रव करने वाले कली को तो मार सकता था, परंतु अपने शरणागत आए हुए कलयुग को उसे कहीं न कहीं तो स्थान देना ही पड़ेगा। आगे कली कह रहे हैं, कलयुग जो है वो महाराज परीक्षित से कहते हैं, तन्मे धर्मभृताम श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ
स्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्दिष्टमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ तन्मे अत मे यानी मेरा धर्मभृतां धर्म के समस्त रक्षकों में से श्रेष्ठ कि अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई रक्षा करने वाला है धर्मभृतां धर्म की रक्षा करने वाला है तो उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हो और मैं जानता हूँ कि मैं अधर्म का प्रतीक हूँ और फिर भी मैं आपकी शरण में स्थानम निर्दिष्ट मरहसि मैं अधर्म का प्रतीक हूँ और आप धर्म के रक्षक हो लेकिन फिर भी ये भी तो एक धर्म है कि जो हमारी शरण में आता है उसको संरक्षण प्रदान हो आप धर्म के रक्षक हो और मैं आपकी शरण में आया हूँ इसलिए क्या करो स्थानम निर्दिष्ट मरहसि मेरे लिए मेरे रहने के योग्य कोई तो स्थान बताइए आप धर्म में सबसे श्रेष्ठ हो आपकी शरण में चाहे सबसे बड़ा राक्षस क्यों ना आ जाए सबसे बड़ा अधर्मी क्यों ना आ जाए लेकिन क्योंकि आप धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो तो आप अपने शरणागत आए हुए व्यक्ति को अवश्य अभय प्रदान करोगे इसलिए क्या करो स्थानम निर्दिष्ट मरहसि मेरे लिए कोई स्थान कोई योग्य स्थान निर्दिष्ट कीजिए मेरे लिए निश्चित करके बताइए कि मैं किधर जाऊं मेरा समय है मुझे संसार में भेजा गया है पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है आप कहते हो पूरे मेरे राज्य से निकल जाओ आप भी बता दो मैं तो आपकी शरण में आया हूँ मुझे बताओ किधर रहूं स्थानम निर्दिष्ट मरहसि यत्र एव नियतो वत्स्य यत्र एव जहां पर निश्चित रूप से नियतम सदैव से रह सकूं मुझे जहां पर आप रोज आके अपनी तलवार दिखा के मुझे आकर भयभीत मत करना ऐसी जगह मुझे दो जहां पर मैं शांति से सदैव रह सकूं आतिष्ठस्तेन अनुशासनम आतिष्ठ यानी स्थायी रूप से ते यानी आपके अनुशासनम यानी आपके शासन में हर जगह पर आपका राज्य है और मैं मुझे भी यहीं पर रहना पृथ्वी पर रहना है और आप तो धर्म के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हो ना मैं आपकी शरण में आया हूँ अब आप ही मुझे बताओ कि आपके इस राज्य में कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं सुख से रह सकूँ आपको मैं आपकी शरण में हूँ और आपको मुझे संरक्षण प्रदान करना चाहिए मुझे कोई ऐसी जगह बताइए अनुवाद देखिए अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहाँ मैं आपके शासन में संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी ये धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शरणागत को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो आपकी शरण में आ गया और इतिहास गवाह है चाहे कोई भी हो जो जो सबसे बड़े राक्षस भी यदि कभी भक्तों की शरण में आते हैं कभी तो फिर अवश्य उनको संरक्षण प्रदान होता है और यही धर्म का मूल सिद्धांत है कि शरणागत को समस्त सुरक्षा प्रदान कर देनी चाहिए भले ही वह शत्रु क्यों न हो यही धर्म का नियम है अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करेंगे कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान जो हैं वो धर्म की स्थापना करने वाले हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म वही है जो भगवान ने कहा है और अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो फिर हम चाहे संसार के सबसे बड़े अपराधी क्यों न हो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग भगवान कहते हैं आप आकर तो देखो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं बैठा हूँ तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त अपराधों से मुक्त कर दूंगा। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, मैं भगवान के सामने जाकर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं असा पापी, हम पापी हैं, हम भगवान की शरण में क्या मुंह लेकर जाएं, तुम जैसा भी तुम्हारा मुंह लेके जाओ। वो धर्म के ज्ञाता हैं, वो धर्म की स्थापन करने वाले हैं और शरणागत को वो अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे कि कलयुग को महाराजा परीक्षित प्रदान कर रहे हैं। जैसे भी हमने अपराध किए हैं, भले हम संसार में सबसे बड़े अपराधी क्यों न हो, यदि हम भगवान की शरण में आ जाएंगे तो भगवान अवश्य हमें अब सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यही सिद्धांत बता रहे हैं, अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह से संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया होगा। अगर हम भगवान को जाके कहें कि भगवान हम आपकी शरण में आए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, हम जानते हैं कि हम अपराधियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मगर आप तो पतित पावन हो, मेरे जैसा पतित संसार में नहीं और आपके जैसा पतित पावन नहीं, अब आप मुझे पवित्र कर दो, अपनी शरण में ले लो। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बल वो व्यक्ति जो भगवान की शरण में शत्रु रूप से नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो, तो भगवान कितना उसको स्वीकार करके शरणागत शरण रक्षा देते होंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की सुरक्षा करते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता 18.66, सर्वधर्मान परित्यज मां एकम शरण व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच, कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण, माम एकम शरणं व्रजा। आज जिस तरह कलयुग बहुत बड़ा अपराधी होने के बावजूद भी सबसे बड़ी चतुराई का काम कर रहा है कि वो महाराजा परीक्षित की शरण में जा रहा, उसी तरह हमने भी ना जाने कितने अपराध किए होंगे, लेकिन यदि हम भी समस्त अपराधों को त्याग कर भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान से कहेंगे कि अब आप ही हमें संरक्षण प्रदान कीजिए, तो भगवान हमें अवश्य संरक्षण प्रदान करेंगे, क्योंकि ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का वचन है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं बचाऊंगा तुम्हें समस्त अपराधों के दुष्परिणामों से, तुम मां सुच, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने समस्त अपराधों के साथ भगवान की शरण में जाए और भगवान के पवित्र नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस कलयुग में भगवान की शरण में आने का और कोई तरीका नहीं है, कलई वनास्तय 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 गतिरन्यथा, जब हम इस पवित्र नाम को जप करते हैं तो भगवान की शरण में आ रहे होते हैं, ये ही तरीका है। क्योंकि शास्त्र कहते यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा, इस कलयुग में यदि कोई बुद्धिमान है तो वो वही है जो इस संकीर्तन यज्ञ को पालन करके भगवान की शरण में जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी पवित्र नाम का जप करके भगवान की शरण को संरक्षण को प्राप्त कर सकूं और अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।